श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विद। श्री भगवान बोले हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह रूप से कहे जाने वाले शरीर को क्षेत्र इस नाम से कहते हैं और इस क्षेत्र को जो जानता है उसको ज्ञानी लोग क्षेत्रज्ञ इस नाम से कहते हैं। व्याख्या इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। मनुष्य यह पशु है, यह पक्षी है, यह वृक्ष है आदि आदि भौतिक चीजों को इदंता से अर्थात यह रूप से कहता है और इस शरीर को कभी मैं रूप से तथा कभी मेरा रूप से कहता है, परंतु वास्तव में अपना कहलाने वाला शरीर भी इदंता से कहलाने वाला ही है। चाहे स्थूल शरीर हो, चाहे सूक्ष्म शरीर हो और चाहे कारण शरीर हो, पर है वे सभी इदंता से कहलाने वाले ही। जो पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश इन पांच तत्वों से बना हुआ है, अर्थात जो माता पिता के रजवीर्य से पैदा होता है उसको स्थूल शरीर कहते हैं। इसका दूसरा नाम अन्नमय कोष भी है, क्योंकि यह अन्न के विकार से ही पैदा होता है और अन्न से ही जीवित रहता है। अतः यह अन्नमय मन अन्न स्वरूप ही है। इंद्रियों का विषय होने से यह शरीर इदम माने यह कहा जाता है। पांचों ज्ञानेंद्रियां, पांचों कर्मेंद्रियां, पांचों प्राण, मन और बुद्धि इन 17 तत्वों से बने हुए को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। इन 17 तत्वों में से प्राणों की प्रधानता को लेकर यह सूक्ष्म शरीर प्राणमय कोष है। मन की प्रधानता को लेकर यह मनोमय कोष है और बुद्धि की प्रधानता को लेकर यह विज्ञानमय कोष है। ऐसा यह सूक्ष्म शरीर भी अंतःकरण का विषय होने से इदम कहा जाता है। अज्ञान को कारण शरीर कहते हैं। मनुष्य को बुद्धि तक का तो ज्ञान होता है, पर बुद्धि से आगे का ज्ञान नहीं होता, इसलिए इसे अज्ञान कहते हैं। यह अज्ञान संपूर्ण शरीरों का कारण होने से कारण शरीर कहलाता है। अज्ञानमेवा सहि मूल कारणम्। अध्यात्म रामायण उत्तरकांड में 5वां अध्याय 9वां श्लोक। इस कारण शरीर को स्वभाव, आदत और प्रकृति भी कह देते हैं और इसी को आनंदमय कोष भी कह देते हैं। जागृत अवस्था में स्थूल शरीर की प्रधानता होती है और उसमें सूक्ष्म तथा कारण शरीर भी साथ में रहता है। स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म शरीर की प्रधानता होती है और उसमें कारण शरीर भी साथ में रहता है। सुषुप्ति अवस्था में स्थूल शरीर का ज्ञान नहीं रहता, जो कि अन्नमय कोष है, और सूक्ष्म शरीर का भी ज्ञान नहीं रहता, जो कि प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय कोष है, अर्थात बुद्धि अविद्या में लीन हो जाती है। सुषुप्ति अवस्था कारण शरीर की होती है। जागृत और स्वप्न अवस्था में तो सुख दुख का अनुभव होता है, परंतु सुषुप्ति अवस्था में दुख का अनुभव नहीं होता और सुख रहता है, इसलिए कारण शरीर को आनंदमय कोष कहते हैं। कारण शरीर भी स्वयं का विषय होने से, स्वयं के द्वारा जानने में आने वाला होने से इदम कहा जाता है। उपर्युक्त तीनों शरीरों को शरीर कहने का तात्पर्य है कि इसका प्रतिक्षण नाश होता रहता है। इनको कोष कहने का तात्पर्य है कि जैसे चमड़े से बनी हुई थैली में तलवार रखने से उसकी म्यान संज्ञा हो जाती है, ऐसे ही जीवात्मा के द्वारा इन तीनों शरीरों को अपना मानने से, अपने को इनमें रहना वाला मानने से, इन तीनों शरीरों की कोष संज्ञा हो जाती है। इस शरीर को क्षेत्र कहने का तात्पर्य है कि यह प्रतिक्षण नष्ट होता है, प्रतिक्षण बदलता है, यह इतना जल्दी बदलता है कि इसको दोबारा देख नहीं सकते। अर्थात दृष्टि पड़ते ही जिसको देखा है उसको फिर दोबारा नहीं देख सकते, क्योंकि वो तो बदल गया। शरीर को क्षेत्र कहने का दूसरा भाव खेत से भी है। जैसे खेत में तरह तरह के बीज डालकर खेती की जाती है, ऐसे ही इस मनुष्य शरीर में अहंता ममता करके जीव तरह तरह के कर्म करता है। उन कर्मों के संस्कार अंतःकरण में पड़ते हैं। वे संस्कार जब फल के रूप में प्रकट होते हैं तब दूसरा देव पशु पक्षी कीट पतंग आदि का शरीर मिलता है। जिस प्रकार खेत में जैसा बीज बोया जाता है वैसा ही अनाज पैदा होता है, उसी प्रकार इस शरीर में जैसे कर्म किए जाते हैं उसी के अनुसार ही दूसरे शरीर परिस्थिति आदि मिलते हैं। तात्पर्य यह है कि इस शरीर में किए गए कर्मों के अनुसार ही यह जीव बार बार जन्म मरण रूप फल भोगता है। इसी दृष्टि से इसको क्षेत्र कहा गया है। अपने वास्तविक स्वरूप से अलग दिखने वाला यह शरीर प्राकृत पदार्थों से, क्रियाओं से, वर्ण आश्रम आदि से इदम ही है। यह है तो इदम, पर जीव ने भूल से इसको अहम मान लिया और फंस गया। स्वयं परमात्मा का अंश एवं चेतन है, सबसे महान है, परंतु जब वह जड़ पदार्थों से अपनी महत्ता मानने लगता है कि मैं धनी हूं, मैं विद्वान हूं इत्यादि, तब वास्तव में वह अपनी महत्ता घटाता ही है। इतना ही नहीं, अपनी महान बेइज्जती करता है, क्योंकि अगर धन विद्या आदि से वह अपने को बड़ा मानता है तो धन विद्या आदि ही बड़े हुए उसका अपना महत्व तो कुछ रहा ही नहीं। वास्तव में देखा जाए तो महत्व स्वयं का ही है, नाशवान और जड़ धनादि पदार्थों का नहीं है। क्योंकि जब स्वयं उन पदार्थों को स्वीकार करता है तभी वे महत्वशाली दिखते हैं। इसलिए भगवान इदम शरीरम क्षेत्रम पदों से शरीरादि पदार्थों को अपने से भिन्न इदंता से देखने के लिए कह रहे हैं। एतद्यो वेत्ति, जीवात्मा इस शरीर को जानता है, अर्थात ये शरीर मेरा है, इंद्रियां मेरी है, मन मेरा है, बुद्धि मेरी है, प्राण मेरे है, ऐसा मानता है। ये जीवात्मा इस शरीर को कभी मैं कह देता है और कभी यह कह देता है, अर्थात मैं शरीर हूं ऐसा मान लेता है और यह शरीर मेरा है ऐसा भी मान लेता है। इस श्लोक के पूर्वार्ध में शरीर को इदम पद से कहा है और उत्तरार्ध में शरीर को एतत् पद से कहा है। यद्यपि दोनों ही पद नजदीक के वाचक हैं, तथापि इदम की अपेक्षा एतत् पद अत्यंत नजदीक का वाचक है। अतः यह इदम पद अंगुली निर्दिष्ट शरीर समुदाय का द्योतन करता है और एतत् पद इस शरीर में जो मैपन है उस मैपन का द्योतन करता है। तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। जैसे दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में सत असत के तत्व को जानने वाले को तत्वदर्शी कहा है, ऐसे ही यहां क्षेत्रक क्षेत्रज्ञ के तत्व को जानने वाले को तद्विदः कहा है। क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है, इसका जिनको बोध हो चुका है, ऐसे तत्वज्ञ महापुरुष इस जीवात्मा को क्षेत्रज्ञ नाम से कहते हैं। तात्पर्य है कि क्षेत्र की तरफ दृष्टि रहने से, क्षेत्र के साथ संबंध रहने से ही इस जीवात्मा को वैज्ञानिक महापुरुष क्षेत्रज्ञ कहते हैं। अगर ये जीवात्मा क्षेत्र के साथ संबंध न रखे तो फिर इसकी क्षेत्रज्ञ संज्ञा ही नहीं रहेगी, ये परमात्मा स्वरूप हो जाएगा। 13:31 मार्मिक बात, यह नियम है कि जहां से बंधन होता है वहां से खोलने पर ही छुटकारा हो सकता है। अतः मानव शरीर से ही बंधन होता है और मानव शरीर से ही बंधन से मुक्ति हो सकती है। अगर मनुष्य का अपने शरीर के साथ किसी प्रकार का भी अहंता ममता रूप संबंध न रहे तो वह मात्र संसार से मुक्त ही है। अतः भगवान शरीर के साथ अपने माने हुए अहंता ममता रूप संबंध का विच्छेद करने के लिए शरीर को क्षेत्र बताकर उसको इदंता से देखने के लिए कह रहे हैं, जो कि वास्तव में पृथक ही है। शरीर को इदंता से देखना केवल अपना कल्याण चाहने वाले साधकों के लिए ही नहीं अपितु मनुष्य मात्र के लिए परम आवश्यक है, कारण कि अपना उद्धार करने का अधिकार और अवसर मनुष्य शरीर में ही है। यही कारण है कि गीता का उपदेश आरंभ करते ही भगवान ने सबसे पहले शरीर और शरीरी की पृथकता का वर्णन किया है। इदम का अर्थ है यह है, अर्थात अपने से अलग दिखने वाला। सबसे पहले देखने में आता है पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश से बना हुआ यह स्थूल शरीर। यह दृश्य है और परिवर्तनशील है। इसको देखने वाले हैं नेत्र, जैसे दृश्य में रंग, आकृति, अवस्था, उपयोग आदि सभी बदलते रहते हैं, पर उनको देखने वाला नेत्र एक ही रहते हैं। ऐसे ही शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध रूप विषय भी बदलते रहते हैं, पर इनको जानने वाले कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका एक ही रहते हैं। जैसे नेत्रों से ठीक दिखना, कम दिखना और बिल्कुल न दिखना, ये नेत्र में होने वाले परिवर्तन मन के द्वारा माने जाते हैं। ऐसे ही कान, त्वचा, जिह्वा और नासिका से होने वाले परिवर्तन भी मन के द्वारा जाने जाते हैं। अतः पांचों ज्ञानेन्द्रिया, कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका भी दृश्य है। कभी क्षुब्ध और कभी शांत, कभी स्थिर, कभी चंचल, ये मन में होने वाले परिवर्तन बुद्धि के द्वारा जाने जाते हैं। अतः मन भी दृश्य है, कभी ठीक समझना, कभी कम समझना, कभी बिल्कुल नहीं समझना, ये बुद्धि में होने वाले परिवर्तन स्वयं जीवात्मा के द्वारा जाने जाते हैं। अतः बुद्धि भी दृश्य है। बुद्धि आदि के दृष्टा स्वयं जीवात्मा में कभी परिवर्तन हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं और होना संभव भी नहीं। यह सदा एक रस रहता है, अतः कभी किसी का दृश्य नहीं हो सकता। इंद्रियां अपने अपने विषय को तो जान सकती है, पर विषय अपने से परे सूक्ष्म, श्रेष्ठ और प्रकाशक इंद्रियों को नहीं जान सकते। इसी तरह इंद्रियां और विषय मन को नहीं जान सकते। मन, इंद्रियां और विषय ये मिलकर के बुद्धि को नहीं जान सकते, तथा बुद्धि, मन, इंद्रियां और विषय ये सब मिलकर स्वयं को नहीं जान सकते। न जानने में मुख्य कारण यह है कि इंद्रियां, मन और बुद्धि तो सापेक्ष दृष्टा है, अर्थात एक दूसरे की सहायता से केवल अपने से स्थूल रूप को देखने वाले हैं, किंतु स्वयं जीवात्मा शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि से अत्यंत सूक्ष्म और श्रेष्ठ होने के कारण निरपेक्ष दृष्टा है, अर्थात वह दूसरे किसी की सहायता के बिना खुद ही देखने वाला है। उपर्युक्त विवेचन में यद्यपि इंद्रियां, मन और बुद्धि को भी दृष्टा कहा गया है, तथापि वहां भी यह समझ लेना चाहिए कि स्वयं जीवात्मा के साथ रहने पर ही इनके द्वारा देखा जाना संभव है, कारण कि मन, बुद्धि आदि जड़ प्रकृति का कार्य होने से स्वतंत्र दृष्टा नहीं हो सकते। अतः स्वयं ही वास्तविक दृष्टा है। दृश्य पदार्थ शरीर, देखने की शक्ति, नेत्र, मन, बुद्धि और देखने वाला जीवात्मा, इन तीनों में गुणों की भिन्नता होने पर भी तात्विक एकता है। कारण कि तात्विक एकता के बिना देखने का आकर्षण, देखने की सामर्थ्य और देखने की प्रवृत्ति सिद्ध ही नहीं होती। यहाँ ये शंका हो सकती है कि स्वयं जीवात्मा तो चेतन है, फिर वह जड़ बुद्धि आदि को, जिनके साथ इसकी तात्विक एकता ही नहीं है, कैसे देखता है? इसका समाधान यह है कि स्वयं जड़ से तादात्म्य करके जड़ के सहित अपने को मैं मान लेता है। यह मैं न तो जड़ है और न चेतन ही। जड़ में विशेषता देखकर ये जड़ के साथ होकर कहता है कि मैं धनवान हूं, मैं विद्वान हूं इत्यादि, और चेतन में विशेषता देखकर यह चेतन के साथ होकर कह देता है कि मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं इत्यादि। यही प्रकृतिस्थ पुरुष है जो प्रकृतिजन्य गुणों के संग से ऊंच नीच योनियों में बार बार जन्म लेता है। गीता 13वां अध्याय 21वां श्लोक। तात्पर्य निकला कि प्रकृतिस्थ पुरुष में जड़ और चेतन दोनों अंश विद्यमान है। चेतन की रुचि परमात्मा की तरफ जाने की है, किंतु भूल से इसने जड़ के साथ तादात्म्य कर लिया। तादात्म्य में जो जड़ अंश है उसका आकर्षण जड़ता की तरफ होने से वही सजातीयता के कारण जड़ बुद्धि आदि का दृष्टा बनता है। यह नियम है कि देखना केवल सजातीयता में ही संभव है, अर्थात दृश्य दर्शन और दृष्टा के एक ही जाति के होने से देखना होता है, अन्यथा नहीं हो सकता। इस नियम से ये पता चलता है कि स्वयं जीवात्मा जब तक बुद्धि आदि का दृष्टा रहता है तब तक उसमें बुद्धि की जाति की जड़ वस्तु है, अर्थात जड़ प्रकृति के साथ उसका मानवा संबंध है। ये मानवा संबंध ही सब अनर्थों का मूल है। इस माने हुए संबंध के कारण वह संपूर्ण जड़ प्रकृति अर्थात बुद्धि, मन, इंद्रियां, विषय, शरीर और पदार्थों का दृष्टा बनता है। परिशिष्ट भाव इदम के अंतर्गत अर्थात क्षेत्र के अंतर्गत अनंत ब्रह्मांड है। अनंत ब्रह्मांडों में जितने भी शरीर हैं, उनमें परा तो क्षेत्रज्ञ है अर्थात जीवात्मा क्षेत्रज्ञ है, और अपरा माने जगत, ये क्षेत्र है। जीव जगत को जानने वाला और परमात्मा को मानने वाला है। जानने वाला व्यापक होता है, अतः क्षेत्रज्ञ के एक अंश में अनंत ब्रह्मांड है। येन सर्वमिदं ततम 2:17। साधक को चाहिए कि वह इस बात को जाने कि मैं क्षेत्र नहीं हूं, प्रत्युत क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ हूं। दृश्य दृष्टा के किसी अंश में होता है, जैसे आंख से सब कुछ देखने पर भी आंख नहीं भरती, अतः वास्तव में आंख दृश्य से भी बड़ी हुई। बुद्धि से कितनी बातें जान ले पर बुद्धि कभी नहीं भरती, खाली रहती है। जो भरते हैं त्यो खाली होती है, अतः बुद्धि बहुत बड़ी है। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय भी हमारी बुद्धि के जानने के अंतर्गत है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण संपूर्ण शरीर दृश्य है। ऐसे ही स्थूल, सूक्ष्म और कारण संपूर्ण सृष्टि भी दृश्य है। यह संपूर्ण दृश्य दृष्टा के किसी अंश में है। जैसे धन के संबंध से मनुष्य धनवान होता है, किंतु धन का संबंध न रहने पर धनवान तो रहता है पर धनवान संज्ञा नहीं रहती, ऐसे ही क्षेत्र के संबंध से स्वयं क्षेत्रज्ञ कहलाता है, किंतु क्षेत्र का संबंध न रहने से क्षेत्रज्ञ तो रहता है पर क्षेत्रज्ञ संज्ञा नहीं रहती। तात्पर्य यह है कि एक ही चिन्मय तत्व क्षेत्र के संबंध से क्षेत्रज्ञ, क्षर के संबंध से अक्षर, शरीर के संबंध से शरीरी, दृश्य के संबंध से दृष्टा, साक्ष्य के संबंध से साक्षी और करण के संबंध से कर्ता कहा जाता है। वास्तव में उस तत्व का कोई नाम नहीं है, वह